हरि ओम। परम पूज्य महाराज जी के पुनित श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए नए वर्ष की शुभ शुरुआत, पूज्य महाराज जी का पधारना एक शुभ आदेश है। पूरे महीने पूज्य महाराज जी हमारे बीच में रहेंगे। प्रश्नोपनिषद, जीवन में प्रश्न जिसके पास ना हो उसका जीवन व्यर्थ किया कहा जाता है, और प्रश्नोपनिषद में जो प्रश्न उठाए वह ऋषि मुनि है, और उनको उपनिषद के माध्यम से जो प्रश्नोपनिषद में बताया गया है वह पूज्य महाराज जी की पुनितवाणी में हम गत वर्ष भी सुने। आगे पूज्य महाराज जी इसी उपनिषद को लेकर पूरे महीने तक हमें आशीर्वाद एवं प्रवचन देंगे। आप सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी को वंदन करते हुए ओम हरे।
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति 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 ही। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति 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 ही। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव एवं सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम प्रेमास्पद सत्संग प्रेमी प्रेमपुरी आश्रम के सत्संगी गण, दो वर्ष से हम लोग प्रश्नोपनिषद पर इस सत्र में विचार कर रहे हैं। ईशादी क्रम से गत कुछ वर्षों से यहां प्रवचन हम लोग करते हैं। चार, ये चौथी उपनिषद है, इसका विचार बहुत सा हो गया है। कुल मिलकर के इसमें छह प्रश्न हैं, पांच प्रश्नों का विचार हो चुका है, षष्ठ प्रश्न का विचार इस सत्र में प्रारंभ होना है। अलग अलग चार वेदों की प्रसिद्ध दस उपनिषदों पर आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। उन दस उपनिषदों में प्रश्न उपनिषद का भी अपना एक मुख्य स्थान है। दस उपनिषदों में से चार उपनिषदें तो हैं यजुर्वेद की, एक है ऋग्वेद की, तीन है अथर्ववेद की और दो सामवेद की। प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद, ये तीन उपनिषदें हैं अथर्ववेद की। और वेद ये नाम होता है मंत्र ब्राह्मणयोर वेद संज्ञा। वेद ये नाम है मंत्र तथा ब्राह्मण भाग का। वेद के दो भाग होते हैं, ब्राह्मण भाग मंत्र भाग। मंत्र भाग को माना जाता है व्याख्येय और व्याख्यान रूप माना जाता है ब्राह्मण भाग को, है यानी वेद स्वयं ही अपना भी व्याख्यान करता है। मंत्रात्मक वेद का ब्राह्मण रूप वेद व्याख्यान करता है, जिसका व्याख्यान किया जाता है उसे कहा जाता है व्याख्येय, व्याख्यान का विषय। तो अथर्ववेद भी मंत्र तथा ब्राह्मण इन दो विभाग में विभक्त है। चारों वेदों में कुछ भाग मंत्रात्मक है, कुछ भाग ब्राह्मणात्मक है। तो मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेद की मंत्र भाग की उपनिषद है और प्रश्न उपनिषद है ब्राह्मण भाग की अथर्ववेद के। तो जब ये विभाग आपको समझ में आया कि मंत्र व्याख्येय होता है और व्याख्यान ब्राह्मण होता है और मुंडक उपनिषद मंत्र है और प्रश्न उपनिषद ब्राह्मण है, तो इसमें से कौन व्याख्येय होगा और कौन व्याख्यान होगा? मुंडक व्याख्येय होगा यानी व्याख्यान का विषय होगा और व्याख्यान माना जाएगा प्रश्न उपनिषद को ब्राह्मण होने से। तो मुंडक में संक्षेप में जिस अर्थ को कहा गया उसी को विस्तार से कहने के लिए प्रश्न उपनिषद है व्याख्यान होने से। व्याख्याता करता क्या है? एक मूल व्याख्या ग्रंथ में जिस अर्थ को संक्षेप में बताया गया उसे उस अर्थ जिज्ञासु समझ सके ऐसे उदाहरण सहित युक्ति सहित वाक्यों का प्रयोग करके विस्तार से कहता है, यही तो व्याख्यान है। तो मुंडक उपनिषद में जिस अर्थ को संक्षेप में कहा गया उसी को विस्तार से प्रश्न उपनिषद में कहा गया है। तो मुंडक उपनिषद में क्या कहा गया वो तो व्याख्यान में, ऐसे तो परंपरा में होना चाहिए मुंडक का पहले विचार व्याख्या होने से और बाद में प्रश्न उपनिषद का होना चाहिए, लेकिन परंपरा से अध्ययन करते हैं तो पहले प्रश्नोपनिषद का फिर मुंडक का, इसलिए मुंडक का तो प्रश्नोपनिषद के बाद विचार शुरू होगा। तो वहां कही गई है दो विद्याएं मुंडक उपनिषद में, वहां ब्रह्म जिज्ञासु सवनक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं आचार्य अंगिरा जी के पास और आचार्य अंगिरा जी से प्रश्न करते हैं कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, हे भगवान किस एक को जानने से सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। तो जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता उसे समझाने के लिए आचार्य अंगिरा जी ने दो विद्याएं बताई। पहले विद्या के दो विभाग किए, द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्याएं समझनी चाहिए। जानने योग्य, वेदितव्य का अर्थ होता है जानने योग्य, मनुष्य जीवन पा करके यदि जानने योग्य कुछ है तो दो विद्याएं जानने योग्य है, क्योंकि मनुष्य कि आंतरिक अभिलाषा दो ही प्रकार की हो सकती है। एक लौकिक उत्कर्ष विषयक अभिलाषा हो सकती है और एक मोक्ष की अभिलाषा हो सकती है, उसे अलौकिक फल कहा जाता है। लौकिक फल विषयनी अभिलाषा या तो अलौकिक फल जो मोक्ष है तद विषयनी अभिलाषा। तो लौकिक उत्कर्ष का दूसरा नाम है शास्त्रीय भाषा में अभ्युदय। तो अभ्युदय की इच्छा या तो मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की इच्छा का ही दूसरा नाम है मुमुक्षा। तो ये अभ्युदय ये लोकांतपाती होने से लोक ही संसार है, और संसार कहां से कहां तक है? तो संसार है पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत का। मनुष्य से विकास करते 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 मनुष्य संसार के अंदर ब्रह्मा तक बन सकता है, ये विकास कहा जाएगा लौकिक विकास उत्कर्ष। और इसका साधन भूता जो विद्या है उसे अपरा विद्या कहा जाता है। परा विद्या और अपरा विद्या ऐसी दो विद्याएं बताई ना, द्वे विद्ये वेदितव्ये, जानने योग्य दो विद्याएं हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। जो लोकांतपाती उत्कर्ष करना चाहता है, विकास करना चाहता है, विकसित होना चाहता है, तो विकसित होते होते कितना विकसित हुआ जा सकता है संसार में? तो हिरण्यगर्भ तक विकास कर सकते हैं आप। वहां संपूर्ण विकास हो चुका है, पूर्ण विकसित है, विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो हुआ, उसका साधन वो अपरा विद्या है, उसका फल है संसार अंतपाती उत्कर्ष अभ्युदय, और साधन है अपरा विद्या। इस अपरा विद्या के अवांतर दो भेद बताए गए, जैसे मूल विद्या के दो भेद हुए अपरा विद्या परा विद्या, ऐसे अपरा विद्या के भी अवांतर दो भेद है। ये अपरा विद्या है अनुष्ठेय विद्या। अनुष्ठेय कहते हैं आप अपने प्रयत्न से जिस साधन को निष्पन्न करते हैं उसे अनुष्ठेय कहा जाता है। साधक को, साधक के प्रयत्न से संपन्न होने वाला साधन वो कहलाता है अनुष्ठेय, और वो अपरा विद्या है अनुष्ठेय विद्या। वह दो प्रकार की है, एक का नाम है कर्म, दूसरे का नाम है उपासना। तो कर्म नाम की जो अपरा विद्या है ये भी संसार अंतपाती उत्कर्ष चाहने वाले को संसार अंतपाती उत्कर्ष प्राप्त कराती है, इसलिए वो भी अपरा विद्या है। संसार अंतपाती उत्कर्ष दिलाने वाली विद्या का नाम अपरा विद्या। जो वेदों ने बताए हुए, शास्त्रों ने बताए हुए कर्म करते हैं, शास्त्र जो कर्म करने के लिए मना करता है वो नहीं करते माना जाता है, और उनका लोकांत प्रतिफल चाहते हैं, सकाम कर्म का अनुष्ठान, वो लोकांत प्रतिफल देता है, जो आप चाहते हैं फल वो फल दिलाता है। इसलिए कर्म एक हो गई अपरा विद्या, और दूसरी अपरा विद्या है उपासना, सकाम उपासना है, उसका भी अनुष्ठान करना पड़ता है, उसको भी आपको अपने प्रयत्न से निष्पन्न करना पड़ता है, इसलिए वो भी अपरा विद्या है, अनुष्ठेय विद्या है उपासना। तो इन दो प्रकार की विद्याओं में से कर्म रूप जो अपरा विद्या है उसे तो वेद के जैसे मंत्र और ब्राह्मण ये दो अवांतर विभाग है ना, ऐसे प्रतिपाद्य विषय को लेकर के, ये तो प्रतिपादक वेद के दो भाग हुए, मंत्र ब्राह्मण, और प्रतिपाद्य विषय को लेकर के प्रतिपादक वेद के अवान्तर दो भेद है, कर्मकांड और ज्ञानकांड कहलाता है। कर्मकांड में कर्म का विस्तार से वर्णन आता है, तो ये अपरा विद्या का जो प्रथम भेद है कर्म रूप, उसे आपको विस्तार से जानने के लिए कर्मकांड का अध्ययन करना है। कर्मरूपी अपरा विद्या का विस्तार से वर्णन कर्मकांडात्मक वेद भाग में आएगा, वहां भी दो मंत्र और ब्राह्मण दोनों हैं कर्म के प्रतिपादक। और उपासना ये जो है उपनिषदों में भी आई है और कर्मकांड में भी आई है, इसलिए कुछ उपासनाओं को बताने के लिए यहां मुंडक में भी प्राण उपासना आई, अपरा विद्या का वर्णन आया है, तो उपासना रूप अपरा विद्या को उपासना को बताया गया है उपनिषद में। और वो सकाम उपासनाएं संसार अंतपाती अभ्युदय दिलाने वाली, उत्कर्ष दिलाने वाली अनेकों है, कई प्रकार की है, उसमें से एक मुख्य विद्या मानी जाती है, उपासना मानी जाती है प्राण उपासना। और प्राण उपासना को यहां मुंडक में संक्षेप में बताया गया है और उसी का विस्तार से वर्णन करने के लिए ये तीन प्रश्न है, कुल प्रश्नोपनिषद में छह प्रश्न है ना, और प्रश्नोपनिषद का आरंभ होता है जो उपनिषद प्रतिपाद्य विद्या है, उपनिषद शब्द का एक अर्थ होता है रहस्य, रहस्य कहते हैं गुह्य को, छिपे हुए अर्थ को, गूढ़ अर्थ को, वो सहसा समझ में नहीं आता, लेकिन जब संवाद होता है किसी का प्रश्न उसका फिर उत्तर, तो संवाद के माध्यम से जो दुर्विज्ञ अर्थ है, समझने में कठिन अर्थ है, वो सरलता से समझ में आता है। उस दृष्टि से छह प्रश्नकर्ता ऋषि और एक आचार्य उत्तर देने वाले, छह प्रश्नकर्ता जो ऋषि हैं सुकेशादि, उनके तीन अलग अलग विशेषण प्रश्नोपनिषद के प्रथम मंत्र में बताए गए हैं। वे ब्रह्म पर है, ब्रह्मनिष्ठ है, और पर ब्रह्म अन्वेष मान है, ऐसे तीन विशेषण हैं। ब्रह्म पर शब्द का अर्थ निकलता है कि अपर ब्रह्म को, ब्रह्म भी दो प्रकार का है, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, अपर ब्रह्म है कार्य ब्रह्म, हिरण्यगर्भ, कार्य उपाधि वाला ब्रह्म, ब्रह्म कोई कार्य उत्पन्न तो नहीं होता, इसलिए कार्य ब्रह्म कैसे कहा जाएगा, उसकी उपाधि उत्पन्न होने से उसे माना गया अपर ब्रह्म। और वो अपर ब्रह्म है एक प्रकार से प्राण, सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, इनको कहा जाता है अपर ब्रह्म उपनिषदों में, समष्टि प्राण, सूत्रात्मा, जिसे सुनकर के, हाँ, जिसे सुनकर के नारद जी की आत्मविषयनी जिज्ञासा शांत हो गई थी, आत्मजिज्ञासु बनकर के सनत कुमार जी के पास नारद जी जाते हैं और सूत्रात्मा यानी समष्टि प्राण का वर्णन करते हैं सनत कुमार जी, तो नारद जी को लगता है कि यही आत्मा है, उनकी आत्मजिज्ञासा शांत हो जाती है, फिर से उनके अंदर प्राण से भी अभ्यंतर तत्व निर्विशेष चेतन की जिज्ञासा उत्पन्न करके आत्मज्ञान कराते हैं, वो अलग बात, लेकिन इसे भी वो निकटवर्ती उपाधि होने से समष्टि प्राण वो कार्य ब्रह्म कहलाता है। समष्टि बुद्धि वो कार्य ब्रह्म की उपाधि होने से कार्य ब्रह्म कहलाती है। जो एक प्रकार से गीता के 15वें अध्याय में तीन पुरुष बताए हैं ना, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। उसमें से जो क्षर पुरुष है वो कार्य उपाधि है, उसे अपर ब्रह्म कह लो, और अक्षर को कारण ब्रह्म और कारण उपाधि होने से, और पर ब्रह्म है पुरुषोत्तम है निरुपाधिक ब्रह्म, वो पर ब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, निर्विशेष है, ज्ञेय ब्रह्म है। तो उसमें से ये जो हिरण्यगर्भ है, कार्य उपाधि है, उसे कहा गया एक प्रकार से सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ इन नामों से, और उसी को ये लोग समझते थे पर ब्रह्म है। कौन? सुकेशा आदि छह ऋषि है और वे अपर ब्रह्म को ही यानी हिरण्यगर्भ को ही सर्वोत्कृष्ट समझते थे, संसार के अधिपति हैं वे। तो जो अपर ब्रह्म को पर ब्रह्म समझे उसे कहा जाता है ब्रह्म पर। और ब्रह्मनिष्ठ का अर्थ है फिर उसी जिसको पर ब्रह्म समझ रहे हैं अपर ब्रह्म को, और उसी की उपासना में उसकी प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उसी के उपासक हैं। तो अपर ब्रह्म के उपास्य ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्मनिष्ठ, इससे एक प्रकार से बताया गया कृतोपास्ती है। परब्रह्म की जिज्ञासा उन लोगों के चित्त में होती है जो कृतकर्मा है, कृतोपास्ती है। कृतकर्मा कहा जाता है जिसने कर्म कर लिया है, चित्त को अर्थात जिसका चित्त शुद्ध हो गया है, कर्म कर लिया यानी भोजन कर लिया, इसकी पहचान है कि भोजन जिसने कर लिया उसकी भूख निकल जाएगी, क्षुधा नहीं रहेगी उसके अंदर। ऐसे चित्त में से कर्म से निवृत्त होने वाला जो मल नामक दोष है वह निवृत्त हो गया है यदि, तो माना जाएगा कि वो कृतकर्मा है। निष्काम कर्म के बिना मल नामक दोष की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए गीता ने कहा ना कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, अंतकरण की शुद्धि के लिए। अंतकरण का मल निवृत्त होता है निष्काम कर्म अनुष्ठान से, निष्काम कर्म का अनुष्ठान इन्होंने किया है, और इसलिए कृतकर्मा है। और ब्रह्मनिष्ठ है का अर्थ है उपास्य ब्रह्म की उपासना भी कर चुके हैं, और उपासना हो चुकी है इसका ज्ञापक क्या है? तो जैसे भोजन हो चुका है इसका ज्ञापक है भूख निकल जाती है, ऐसे उपासना का फल है चित्त की चंचलता का निकल जाना, विक्षेप राहित्य, चित्त की स्थिरता, एकाग्रता। तो जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं है, विक्षेप नामक चित्तगत दोष निवृत्त हो गया, तो माना जाएगा कि वह कृतोपास्ती है, शांत चित्त है। तो प्रसिद्ध तीन दोष होते हैं ना, मल, विक्षेप, आवरण। तो मल और विक्षेप नामक दोष से रहित ये छह के छह ऋषि है, इनका ये विशेषण है ना, ब्रह्म परा, ब्रह्मनिष्ठा, कृतकर्मा है, कृतोपास्ती है। और ऐसे जो होते हैं मल विक्षेप रहित, उनके अंदर वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा होती है, ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। और ब्रह्म को जानने की इच्छा फिर क्या करती है कि जब तक ब्रह्म का आत्म रूप से, पर ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार नहीं होता तब तक शांत नहीं बैठने देती। आपके अंदर किसी पदार्थ की तीव्र इच्छा हो तो इच्छा आपको शांति से बैठने नहीं देगी। जब तक वो पदार्थ प्राप्त नहीं होगा तब तक उस पदार्थ के प्राप्ति के उपाय में प्रवृत्त करती रहेगी, अंदर से घंटी बजाती रहेगी वो इच्छा कि शांति से बैठो मत, उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न करो। ऐसे पर ब्रह्म की जिज्ञासा होगी तो वह जिज्ञासा शांति से बैठने नहीं देगी जिज्ञासु को भी। ब्रह्म ज्ञान के जो साधन है उस साधन में प्रवृत्त कराएगी, अंतरंग साधनों में। तो ब्रह्म ज्ञान का साधन एक बताया गुरूपसत्ति को। गुरूपसत्ति का अर्थ होता है गुरु के पास विधि पूर्वक जाना। उपसत्ति में सदरी गतो धातु है, उप शब्द है, उसका अर्थ होता है, उप का अर्थ होता है समीप, पास में, और सत्ति का अर्थ है जाना। तो गुरु के पास जाना किस लिए? तो तद विज्ञानार्थम। तो वास्तविक ब्रह्म जिज्ञासा यदि होगी तो वह ब्रह्म जिज्ञासु को शांति से बैठने नहीं देगी। ब्रह्म ज्ञान जो ब्रह्म जिज्ञासा का विषय है वह प्राप्त होने तक उसके साधन में अंदर से प्रेरित करती रहेगी इच्छा ब्रह्म ज्ञान की। तो ब्रह्म ज्ञान का साधन क्या है? तो ब्रह्म ज्ञान का एक साधन गुरूपसत्ति है। प्रश्न उपनिषद का व्याख्या जो मुंडक, उसमें बताया गया कि तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। उसी मूल मंत्र का व्याख्यान करते हुए एक प्रकार से प्रश्न उपनिषद के प्रथम मंत्र में इन छह ऋषियों को बताया गया कि परम ब्रह्म अन्वेषमाना, वो जो पर ब्रह्म का अन्वेषण कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज। तो कहां मिलेगा? तो कहते हैं हमको जिसकी खोज है, जिसकी जिज्ञासा है, वो उस समय आचार्य पिपलाद जी की बड़ी प्रसिद्धि थी ब्रह्म वेत्ता के रूप में। तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया आपस में बैठ करके कि ये सह वे तत्सर्वम वक्षति। ये सह यानी जो आचार्य पिपलाद जी है, ये हम लोगों को जिसे जानना है वो सब बता सकते हैं। जिस जिस विषय भी हमारी जिज्ञासा है उसके एक ज्ञाता है, ये जरूर हमें बताएंगे। इसलिए क्या किया उन्होंने? तो समित पानयो भगवंतम पिपलादम उपसन्ना, ऐसा आता है कि समित पानी होकर के आचार्य पिपलाद जी के पास गए। उपसन्ना, उपसत्ति का अर्थ होता है पास में जाना, और उपसन्ना का अर्थ है पास गए, आचार्य पिपलाद जी के पास गए। तो गुरूपसत्ति एक साधन है, और वहां जाकर के फिर क्या करना है? तो गीता ने बताया तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो प्रणिपात यानी निराभिमानिता, निराभिमानिता, निराभिमानी किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। जो निराभिमानी होगा, निराहंकारी होगा, वही झुकता है, प्रणिपात करता है। तो ये नहीं कि जा करके खड़े रह जाए और हमको ब्रह्म ज्ञान दे दो फिर ऊंचा करके ये कर दे, ऐसा नहीं। प्रणिपात और परिप्रश्न, तो ये जो है आचार्य पिपला जी के पास गए विनय पूर्वक और फिर उनसे पूछा जो जिज्ञासा थी। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ठीक हैं, ब्रह्म पर हो, ब्रह्मनिष्ठ हो, परब्रह्म के अन्वेषी हो, लेकिन एक वर्ष तो आपको मेरे पास रहना पड़ेगा बिना प्रश्न किए, यहां रहो एक वर्ष और उसके बाद फिर यदि पूछोगे और कुछ आपके प्रश्न का उत्तर मैं जानता हूंगा तो बताऊंगा। तो ऐसा ये संवाद उनका हुआ और बाकी क्रम से छह ऋषियों ने एक 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 प्रश्न किया। उनमें से पहला प्रश्न अपरा जो विद्या है उसके फल विषयक है और अपरा विद्या का फल है संसार, और संसार विषयक जो प्रश्न है पहला, और संसार में भी मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट कैसे बना जाता है इस विषय के नहीं, अपरा विद्या तो शास्त्रविद साधन है ना, इसलिए मनुष्य से विकास करते करते सर्वविकसित जो स्थिति है वो कैसे प्राप्त की जा सकती है, हिरण्यगर्भ कैसे बना जा सकता है, उसका क्या ये है, उसका फल वर्णन करने के लिए है। और दूसरा और तीसरा प्रश्न वो है अपरा विद्या के स्वरूप को बताने के लिए, और अपरा विद्या में भी जो उपासनात्मक अपरा विद्या है उसके स्वरूप को बताने के लिए पहला दूसरा और तीसरा प्रश्न, इसका विचार हम लोग कर चुके हैं। और चौथे प्रश्न में फिर वो है आपका एक इनका प्रश्न, सौर्यायनी गार्गी का प्रश्न, वो चौथा पांचवा छठवा, ये तीन प्रश्न आते हैं परा विद्या के निरूपण के लिए व्याख्यान के लिए। और परा विद्या का भी ससाधन निरूपण करना है ना, इसलिए ओंकार की उपासना विषयक प्रश्न भी आया पंचम प्रश्न, और चतुर्थ प्रश्न में भी उन्होंने परा विद्या के कुछ विशेष प्रसंगों को पूछा, उसका उत्तर भी हो चुका है। अब पांच ऋषियों ने अपने अपने प्रश्न किए, उनका उत्तर भी आचार्य पिपला जी ने दिया। एक ऋषि बचे हैं, उनका नाम है सुकेशा भारद्वाज, वे आचार्य पिपला जी से प्रश्न कर रहे हैं। उनका प्रश्न और उसका उत्तर मुंडक उपनिषद में प्रसिद्ध जो दो मंत्र हैं उसका व्याख्यान होंगे। मुंडक उपनिषद में प्रसिद्ध दो मंत्र हैं गता कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्चात्मा सर्वे सर्वे परे अब्बे एकी भवन्ति, ऐसा आता है एक मंत्र। और दूसरा यथा नद्यः छिन्नमाना समुद्रे अस्तंगच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात्परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। ये दो मंत्र मुंडक उपनिषद के हैं, इन दो मंत्रों का व्याख्यान करने के लिए ये छठवां प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। तो उसमें क्या बताया गया कि जो एक प्रकार से परा विद्या के स्वरूप का वर्णन कहना फल का वर्णन किया जा रहा है, इसमें परा विद्या है ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान ब्रह्मात्म एकत्व विद्या, तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न होने वाला अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव वो पराविद्या कहलाता है और उसका फल है जीवन मुक्ति और अदृष्ट फल है विदेह मुक्ति। दृष्ट फल है जीवन मुक्ति। दृष्ट कहा जाता है आपको इसी शरीर में अनुभव होता है जिस फल का, वो दृष्ट फल इसी जीवन में अनुभव में आने वाला। तो ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट फल है क्या? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मतलब जीते जी ही आप शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, इनमें जो भी त्रिविध ताप आते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, ये इनमें देखोगे और इनके तापों से अपने आप को संतप्त नहीं मानोगे। शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलिप्त रहोगे, मन में रहते हुए भी मन से अलिप्त रहोगे। जैसे कमल का पत्र पानी में रहता हुआ भी कभी पानी से गीला नहीं होता है, ऐसे जो शरीर में रहता हुआ भी शरीर की अनुकूलता में और प्रतिकूलता में जो होने वाले विकार हैं, कुछ अनुकूल विकार हैं हर्षादि, प्रतिकूल विकार हैं विषादादि, इनसे लिपायमान नहीं होता अपितु असंग रहता है, क्योंकि असंग स्वरूप में प्रतिष्ठित है, ब्रह्मनिष्ठ है। तो ये जीवन मुक्ति है, जीते जी आपको ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। ब्रह्मानंद आपके प्रारब्ध से आपको प्राप्त हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के अधीन नहीं होता, वो स्वतंत्र है ना, निरंकुश आनंद है और किसी साधन के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है वो स्वतंत्र आनंद। ऐसी ऐसी परिस्थिति हो, ऐसा देश हो, ऐसा काल हो, तभी मिलेगा। यदि तो फिर तो कालाधीन हो जाएगा, देशाधीन हो जाएगा, परिस्थिति के अधीन हो जाएगा, साधन के अधीन हो जाएगा। और ऐसा आनंद जो आप किसी भी देश में रहें, देश निरपेक्ष, काल निरपेक्ष और साधन निरपेक्ष आनंद जीते जी आपको हमेशा मिलता रहे तो माना जाता है जीवन मुक्त है। ये पराविद्या का फल है। नहीं, ज्ञान प्रारब्धाधीन है, लेकिन ज्ञान का फल वो प्रारब्धाधीन नहीं है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इसमें बहुनाम जन्मनाम अंते ये ज्ञानवान के साथ लगाना। तो ज्ञान अनेकों जन्मों की साधना से होगा, अनेकों जन्मों की साधनाएं आपको फल देने के लिए प्रारब्ध बन करके सामने आई तो आपको ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार होगा और साक्षात्कार से फिर प्रारब्ध का कोई लेना देना साक्षात्कार के फलभूत आत्मानंद में नहीं है, वो तो स्वतंत्र आनंद है। प्रारब्ध के अधीन होगा तो फिर तो साधन तंत्र हो गया, साधन के अधीन हो गया। ऐसा आनंद वो जीवन मुक्ति, ये दृष्ट फल है। और अदृष्ट फल माना जाता है शरीर छूटने के बाद उसके प्राणों का उत्क्रमण न होना। जब अज्ञानी है, निर्विशेष ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार नहीं हुआ तो जीव भाव है, तो उसका अलग अलग तीन मार्गों से गमन होता है अज्ञानी का। पापी का जाय स्वम्रिय स्वमार्ग से, पुण्य कर्म करने वाले का धूमयान मार्ग कहो या दक्षिणायन मार्ग कहो उससे, और वो उत्तरायण मार्ग है उससे उपासक का गमन होता है ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मज्ञानी का गमन किससे होगा? तो वह जीते जी ही सर्वत देश से अपरिच्छिन्न ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। तो जैसे प्रारब्ध पूरा होगा तो उसकी उपाधिभूत जो स्थूल शरीर, तो जैसा अज्ञानी का ऐसा ब्रह्म ज्ञानी की भी अंत्येष्टि करनी पड़ती है स्थूल शरीर की। तो यदि गृहस्थ है तो अग्निदाह, सन्यासी है तो जल समाधि या भू समाधि। तो ब्रह्म ज्ञानी का भी तो स्थूल शरीर तो जैसे अज्ञानी का होगा ऐसा ही यह दिखेगा। लेकिन सूक्ष्म शरीर गमन होता है तीनों मार्गों से, किसका? अज्ञानी के सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा का। वो जीव भाव समाप्त तो होता है ब्रह्म ज्ञान होते ही। तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर अंतपाती तत्व है, वे सब के सब लीन हो जाते हैं। न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, ये कहा जाता है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। का मतलब स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता नहीं है। तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर नहीं निकलेगा, जब तक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में है तब तक तो जीवन माना जाता है, तब तो वो चिरंजीव हो जाएगा, हमेशा ही रहेगा। कहते ऐसे भी नहीं है, वह उसके शरीर में ही प्राण अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं अज्ञानी की दृष्टि में, और ज्ञानी की दृष्टि में तो अधिष्ठान में। ये सब सबके सब अध्यस्त है ना, और वो अध्यस्त जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये सब अधिष्ठान भूत परमात्मा में विलीन हो जाता है। और फिर घट फूटने पर जैसे घटाकाश महाकाश रूप ही है, वो कहीं आता जाता नहीं महाकाश बनने के लिए, जहां है वही महाकाश है वो। ऐसे जहां ब्रह्मज्ञानी का शरीर शांत हुआ वही ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म भावापन्न हो गए। तो ये कहा गया गता कला पंचदश प्रतिष्ठा इत्यादि में। कला शब्द गता कला पंचदश, इसमें कला शब्द से लेना उनकी उपाधि भूत सूक्ष्म शरीर आदि तत्व, वो सोलह कलाएं होती हैं, इसलिए सन्यासी की षोड़शी करते हैं, वो सोलह कलाओं से रहित हो जाता है ना, उसी षोड़श कल पुरुष विषयक प्रश्न है। और सन्यासी जिसका शरीर छूट गया वो कला रहित हो गया। सोलह कलाएं जब तक है तब तक संसारी, और निष्कल हो गया ब्रह्म तो निष्कल है ना, और इन सोलह कलाओं से रहित हुआ तो निष्कल हो गया ब्रह्म भावापन्न हो गया। इसे बताने के लिए कहा गता कला पंचदश प्रतिष्ठा। तो यहां तो पंचदश मात्र कलाएं बताई है, पंद्रह। एक कला कर्म को अलग गिना है, इसमें तो सोलह कलाएं अलग अलग बताई जाएगी इसी प्रश्न के उत्तर में। लेकिन वहां मूल मंत्र में गता कला पंचदश प्रतिष्ठा में पंचदश और एक सोलहवीं कला कर्म को बताया गया। कर्माणि विज्ञान मयश्चात्मा, इसमें कर्म आया ना, वो भी एक सोलहवीं कला है। तो ये सारी सोलह कलाएं वो कहां जाती है? तो कहते परे अव्यय सर्व एकी भवंती। ये सब के सब सोलह कलाएं और सोलह कलाओं से उपलक्षित सारा जगत अनात्मा मात्र, पर अव्यय शब्दित जो परमात्मा है, अव्यय का अर्थ होता है निर्विकार। तो निर्विकार जो परब्रह्म उसमें एक ही भवंती। रस्सी का ज्ञान होने पर सर्पादि कहां जाते हैं? रस्सी के अज्ञान से भासने वाले रस्सी में विलीन हो जाते हैं। ऐसे अधिष्ठान भूत ब्रह्म का बोध होते ही, ऐसे तो उसी समय विलीन होना चाहिए, लेकिन अध्यास दो प्रकार का होता है ना, एक होता है सोपाधिक अध्यास, एक होता है निरुपाधिक अध्यास। रस्सी में सर्प का जो अध्यास हो रहा है वो निरुपाधिक अध्यास है। निरुपाधिक अध्यास में तो अधिष्ठान का ज्ञान होते ही अध्यस्त वस्तुएं अधिष्ठान रूप हो जाती है, उनकी प्रतीति वहां पर नहीं होगी। लेकिन सूर्य किरणों में जो जल की प्रतीति, और तालाब आदि के किनारे आप खड़े रहो तो पैर तो जमीन से टिके हुए हैं, सिर ऊपर है, लेकिन पानी में देखोगे तो अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा, सिर नीचे पैर ऊपर। ऐसे किनारे के पेड़ भी वो सब शाखाएं आदि नीचे दिखेगी, जड़ ऊपर दिखेगी। और वो आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये तो पानी के कारण ऐसा दिख रहा है, तो अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी जब तक उपाधि रहेगी तब तक वो उल्टा ही दिखेगा। ऐसे किरणों में जल ये सूर्य किरणें ही है, ऐसी मृग तृष्णिका का निश्चय होने पर भी आपको अधिष्ठान का ज्ञान रहने पर भी भ्रांति जल की होती रहेगी वहां पर, क्योंकि वहां मरुदेश ये उपाधि है। ऐसे ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी बाधित रूप से जगत दिखता रहेगा जब तक प्रारब्ध रूपी उपाधि है, और जैसे प्रारब्ध रूपी उपाधि छूट जाती है तो फिर ये जगत भी विलीन होगा। जैसे वहां मरुदेश या जलादि उपाधि समाप्त हो जाए तो पेड़ उल्टे नहीं दिखेंगे तालाब में, फिर जल सारा सूख जाए तो जल वहां उपाधि है। ऐसे ही प्रारब्ध उपाधि होता है, वो जब तक रहेगा तब तक जीवन मुक्ति, और प्रारब्ध समाप्त होते ही फिर ये सारा अध्यस्त जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर वो परब्रह्म में विलीन हो जाता है, वो निर्विकार परब्रह्म है उसमें विलीन होता है। और उपाधि तो चली गई कलाएं, लेकिन जिसकी ये उपाधि थी वो कहां गया? तो कहते हैं जैसे नदी समुद्र के पास गई तो नदी का ये गंगा है ये नर्मदा है नाम छूट गया, और जो रूप था सीमित प्रवाह वो भी छूट जाता है नाम रूप। लेकिन नदी, नदी का नाम रूप तो छूट गया, लेकिन नदी यानी वो जो जल है जल तत्व वो कहां गया? वो समुद्र में विलीन होता है, समुद्र रूप ही वो उस समय समुद्र कहलाता है। ऐसे ही उदाहरण में बताया जाता है कि यथा नद्यः शन्नमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये एक मंत्र वहां पर आएगा, वहां पर बताया जाता है कि नदियां जैसे अपना अपना नाम रूप छोड़ करके समुद्र रूप हो जाती है, वो समाप्त नहीं होती, वो अपरिछिन्न भाव को प्राप्त होती है। ऐसे ही नाम रूपात्मक जो कलाएं हैं इन कलाओं से रहित निष्कल ब्रह्म रूप हो जाता है ब्रह्मज्ञानी, दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है, ये वहां पर बताया गया है मुंडक उपनिषद में। इसी इन्हीं दो मंत्रों का विस्तार से व्याख्यान ये छठवां प्रश्न और उसका उत्तर होगा, इसकी चर्चा हम लोग कल से करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।